أعوذ بالله اللهم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورة قدر کے معارف و مسائل ہم شروع کر چکے تھے، پیج نمبر 729 کے پہلے پیراگراف تک ہم نے پڑھ لیا تھا، جس کے تحت ہم نے تقدیر کے بارے میں کچھ تفصیل سے بحث کری تھی، بات کری تھی، اور تقدیر مبرم اور تقدیر معلہ کا فرق آپ کو بتایا تھا. پھر اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی تعیین، ٹھیک ہے، یعنی اس کو معین کرنا. تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے، تصریحات مطلب جو باتیں صریح ہیں، کلیئر ہیں قرآن کریم میں، تو ان سے ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر سے بھی، یعنی ایکچولی اس میں تو نہیں ہے، خیر، کہ شب قدر ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو 40 تک پہنچتے ہیں. تو علماء جو بات کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی دلیل ان کو، یعنی کوئی نہ کوئی دلیل ان تک پہنچی ہوتی ہے، تو جس کی بیسس کے اوپر وہ کوئی بات کرتے ہیں. تو اس وجہ سے نا علماء کے اقوال کبھی ایک سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کافی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو ہر عالم کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل قرآن سے، حدیث سے، یا کسی صحابی کے اثر کی بیسس کے اوپر اس تک ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے. تو 40 تک وہ اقوال پہنچتے ہیں، مگر تفسیر مظہری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تفسیر مظہری جس نے لکھی ہے وہ کل بتایا تھا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کا جو رجحان ہے نا وہ ان تمام اقوال میں سے اس بات کے اوپر ہے، جب ہی انہوں نے یہ بات کہی کہ سب اقوال میں صحیح یہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کو پتا چل گیا کہ صحیح کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رجحان جو ہے، یا ان کو جو چیز صحیح لگتی ہے اپنی تحقیق کے مطابق، وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. مگر آخری عشرے کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے. تو ان 10 میں سے خاص طاق راتیں، یعنی 21, 23, 25, 27 اور 29 میں ازرو احادیث صحیحہ زیادہ احتمال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ احادیث جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ طاق راتوں میں سے کسی میں ہوتی ہے. اس قول میں تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں. جو قول تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے نا، تو اس قول کے تحت پر یہ ساری احادیث جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، یعنی پھر ساری احادیث کورڈ ہو جاتی ہیں اس قول کے اندر، کیونکہ کسی حدیث میں 21ویں رات کا تذکرہ ہے، کسی میں 23ویں رات کا تذکرہ ہے، کسی میں 25ویں، اور کچھ علماء کے قول بھی اسی طرح سے مختلف مختلف ہیں. لوگوں نے اپنے ذاتی مشاہدے کی بیسس کے اوپر بھی یہ بتایا کہ جی ہم نے تو اس والی رات کو پایا، کسی اور نے کہا نہیں ہم نے اس والی رات کو پایا، ٹھیک ہے. تو یہ جو قول ہے نا، اس کے اندر یہ سارے پھر باتیں کورڈ ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہ بدلتی رہتی ہے، یہ کسی سال کسی رات کو ہوتی ہے، کسی تاریخ کی رات کو ہوتی ہے، کسی سال جو ہے کسی دوسری تاریخ کی رات کو ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ جمع ہو جاتی ہیں جن میں 21, 23, 25, 27, 29 راتوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے. اگر شب قدر کو ان راتوں میں دائر، یعنی گھومنے والا، دائر کا مطلب سرکولیٹ کرنا، دائرہ کہتے ہیں نا سرکل کو، تو دائر کا مطلب سرکولیٹ کرنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے، تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور ثابت ہو جاتی ہیں، کسی میں تاویل کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے. یار آپ کو مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں رہتی، بس اس کے اندر سب کورڈ ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ گھومتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے سبھی صحیح ہیں. اسی لیے اکثر آئمہ فقہا نے اس کو عشرہ اخیرہ میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، وہی دائر یا منتقل ہونے والی. ابو قلابہ، امام مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، اس کو راہویہ پڑھتے ہیں، ابو طور یا ابو طور، مزنی، ابن خزیمہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم، سب نے یہی فرمایا ہے. اور ایک روایت میں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی इसके मवाफिफ मनकूल है। और दूसरी रिवायत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की यह है कि ये रात मुंतकिल होने वाली नहीं बल्कि मुअय्यन है। इब्ने कसीर यानी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर ये इमाम शाफी का कौल नकल है कि ये रात जो है ना वो मुअय्यन है, वो चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन किसी और मौके के ऊपर यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने फरमाया होगा कि ये रात जो है वो मुंतकिल होने वाली है। तो शागिर्द तो मौजूद होते हैं उस्ताद के सामने, और हमारे दीन के अंदर शागिर्द और उस्ताद का जो रिश्ता है, जो यानी जो हमें इसके बारे में पता लगता है, वो इतना गहरा है कि जितना कि किसी दूसरे ट्रेडिशन में किसी दूसरे कल्चर के अंदर नहीं रहा है। तो हमारे दीन में जो शागिर्द हुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस दीन के इल्म की इतनी तलब उनके अंदर पैदा करी है कि वो अपने असातिज़ा के किसी कौल को जाने नहीं देते। वो हर चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को कलमबंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सहाबा का नाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा ही किया, और यही मामला फिर अगली जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर हुआ कि अगली जनरेशन में भी शागिर्द अपने उसातिज़ा की बातों को नोट कर लिया करते थे। ठीक है, आज के दौर तक ये मामला चला आ रहा है कि आज जो है चूंकि कलम पेंसिल वाला मामला थोड़ा सा कम हो गया है, तो आज ये रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कॉमन हो गई हैं। तो अभी भी हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो होती हैं वो आज के दौर के अंदर शागिर्द अपने पास रखते हैं और असातिज़ा की सारी बातों को वो रिकॉर्ड करने की कोशिश किया करते हैं। तो ये असल में इस दीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने कशिश रखी है ना, और इसके इल्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने मिठास रखी है, तो ये मिठास जो है ना शागिर्दों को फिर ऐसा बना देती है कि वो हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो इमाम शाफी के शागिर्द भी ऐसे ही थे, उन्होंने इस मौके के ऊपर जो बात फरमाई वो भी रिकॉर्ड कर ली, और इस मौके के ऊपर यानी जिस मौके पर ये फरमाया कि जी ये मुअय्यन है, तो वो वाली बात भी रिकॉर्ड कर ली। और रिकॉर्ड जो करते हैं तो फिर वो तो आगे मुंतकिल होती है। इसी वजह से ना ये एक ही शख्स के एक से ज्यादा अकवाल किसी बात के बारे में मौजूद मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये एक यानी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना इसकी वजह से जो है वो बदगुमान होने की जरूरत है कि भाई ये क्या बात हुई, उन्होंने उस मौके पर ये यानी उन्होंने ये दोनों बातें कह दी। तो भाई दोनों बातें एक बंदा कैसे कर सकता है, भाई कह सकता है दोनों बातें। ठीक है, एक मौके के ऊपर उसकी तहकीक कुछ और थी, किसी दूसरे मौके के ऊपर उसकी तहकीक कुछ और थी। ओपिनियंस बदलते रहते हैं, कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं होते हैं ना। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम उन ओपिनियंस को जज करते रहे, इसलिए कि हम आलिम के दर्जे पर नहीं है, मुज्तहिद के दर्जे पर नहीं है। तो हम उनको जज करने के बजाय हम इसको इस तरह से लिया करें कि भाई हमारा काम जो है वो अपने उलमा को फॉलो करना है। अब हम जो भी उलमा हमें फरमाते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम उसकी तहकीक करें, हम उसकी जड़ तक पहुंचे। ठीक है, अगर उसके आपको जड़ तक पहुंचना है तो आप खुद खुद आलिम बन जाए, खुद मुज्तहिद बन जाए। ठीक है, फिर आप बेशक जड़ तक पहुंचे उस बात की, उसकी तहकीक तक कर पहुंचे। लेकिन अगर आप आलिम नहीं है, आप कुछ और हैं, साइंटिस्ट हैं, कोई फिलोसोफर हैं, आप कोई राइटर हैं, आप कुछ और हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा ये बात। ठीक है, ये बात हमारे जहन में जरा क्लियर नहीं होती आज के जमाने में, ये इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है कि जी अल्लाह ताला हमसे इन सब चीजों के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो इस वजह से ना हमें सारी चीजों की तहकीक करनी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी कुछ और है और उलमा की जिम्मेदारी कुछ और है, उनको उनका काम करने दें, हम अपना काम करें। सीधी सी बात है, जिंदगी आसान हो जाएगी और आखिरत भी इसी तरीके से आसान होगी। चले आगे चलते हैं कि सही बुखारी में हजरत सिद्दीक़ा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहर्रु लैलतुल क़द्र फिल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ानी। ठीक है, तो सही बुखारी की रिवायत मौजूद है, या फिर उन्होंने नकल करी कि शब कदर को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो, तहर्रु यानी तलाश करो, उसमें यानी अपनी तहर्री इस्तेमाल करो, जिसको कहते हैं अटकल इस्तेमाल करना या अपना गुमान इस्तेमाल करना, अपनी यानी कैलकुलेशन करना, कुछ यानी फिक्र करना, किसी चीज को तलाश करना, ये कहते हैं तहर्री करना है उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम में हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि फतलुबूहा फिल वित्र मिन्हा, कि तुम उसको शब कदर को रमजान के अशरे अखीरा की ताक रातों में तलब करो। वित्र कहते हैं ताक को। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब ताक हैं, वित्र हैं। ठीक है, तो ये सारी सही हदीसें मौजूद हैं, सही मुस्लिम में भी सही हदीसें हैं, सही बुखारी में भी सही हदीसें हैं। ठीक है, तो इन सबको आपस में तदबीक करके जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मजहरी के अंदर लिख दिया। ठीक है, लैलतुल कदर के बाज़ फजाइल और इस रात की मखसूस दुआ। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत तो वही है जो सूरत में बयान हुई है कि इस एक रात की इबादत 1,000 महीनों यानी 83 साल से जायद की इबादत से भी बेहतर है। ठीक है, यानी मोर देन 83 ईयर्स बनते हैं 1,000 रातें। ठीक है, तो मोर देन 83 ईयर्स की इबादत से भी ज्यादा। ठीक है, तो फिर एक यानी अनस्पेसिफाइड नंबर छोड़ दिया अल्लाह ताला ने। अब वो वही जैसे कल बात हुई थी कि भाई रात तो हर एक को मिलती है, एक गुनाहगार को भी मिलती है, गुनाहगार मोमिन को भी मिलती है, एक बहुत मुत्तकी परहेजगार मोमिन को भी मिलती है, और एक मुतवस्सित दर्जे के मुत्तकी को भी मिलती है। तो फिर डिटरमिन कैसे होता है हर एक का सवाब? वो उसके तकवा से मल्टीप्लाई होकर के, उसके इखलास से मल्टीप्लाई होकर के जो है जो नेट रिजल्ट निकलता है वो उसको मिल जाता है। ठीक है, फिर बेहतर होने की कोई इतनी बेहतर है कि दुगनी चौगनी 10 गुनी 100 गुनी वगैरह सभी इहतमालात हैं। अच्छा, सहीहैन में, सहीहैन जो है वो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ को सहीहैन कहते हैं, यानी दो सही तरीन किताबें हदीस की। तो इन दोनों में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शब कदर में इबादत जो शब कदर में इबादत के लिए खड़ा रहा उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ हो गए। और हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर में वो तमाम फरिश्ते जिनका मकाम सिदरतुल मुंतहा पर है जिब्राइल अमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं। ठीक है, सिदरतुल मुंतहा, सिदरा कहते हैं बेरी के दरख्त को। ठीक है, और अल मुंतहा मीन्स एक्सट्रीम लिमिट, इंतहाई लिमिट। तो वो बेरी का दरख्त जो कि एब्सोल्युटली इंतहाई लिमिट के ऊपर है, जिसके आगे इंसान नहीं जा सकता, जिसके आगे कोई मखलूक नहीं जा सकती। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेराज के मौके के ऊपर इसके आगे जाने की इजाजत दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। तो सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम और कुछ खास फरिश्ते मौजूद होते हैं। तो उन खास फरिश्तों के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम दुनिया में उतरते हैं, और कोई मोमिन मर्द या औरत ऐसी नहीं जिसको वो सलाम ना करते हो, यानी अल्लाह ताला की तरफ से सलाम ना पेश करते हो, बजुज उस आदमी के जो शराब पीता या खिंजीर का गोश्त खाता हो। तो ये एक्सेप्शंस इवन शबे कदर के अंदर भी रहती हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स शबे कदर की खैर बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम बदनसीब है, क्योंकि इतनी ज्यादा खैर बरकत है ना कि भाई उससे महरूम होने के लिए बहुत ज्यादा यानी एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अपने आप को यानी बचाना पड़ता है। यानी इतनी बारिश हो रही हो तो उस बारिश से बचने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है ना, तो उसी तरीके से इतनी रहमत की बारिश हो रही है तो भाई बचने के लिए फिर एफर्ट करनी पड़ेगी, यानी इतना अल्लाह को नाराज करना पड़ेगा कि इस बारिश रहमतों की बारिश से भी इंसान बच जाए या महरूम रह जाए। असल में क्या हर एतिकाफ करने वाले को ये रात मिल जाती है चाहे वो इबादत में खड़ा हो या ना हो? इतिकाफ जब कर रहे होते हैं तो इतिकाफ करना इटसेल्फ एक इबादत है। ठीक है, तो बाकी इबादतें अगर आपने नहीं भी करी, नमाज नहीं भी पढ़ी और उसमें तिलावत नहीं भी करी, जिक्र अस्कार नहीं भी किया, तो भी कम से कम इतिकाफ वाली इबादत तो आप कर ही रहे हैं ना। ठीक है, तो मिनिमम जो सवाब है एतिकाफ करने का वो उस रात में आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप मौजूद तो हैं वहां पर। ठीक है, यानी कोई और इबादत नहीं करी तो जाहिर है फिर उसका सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो इबादत करी है एतिकाफ करी उसका तो सवाब मिल जाएगा ना। जब घर में बैठे हुए तो घर में तो एतिकाफ की भी की नीयत से नहीं बैठे हुए, और अब फिर आप सोते रहे कुछ इबादत ही नहीं करी। ठीक है, तो फिर कैसे, फिर तो कुछ भी नहीं किया ना आपने, तो फिर उसमें भी अल्लाह ताला की रहमत से बईद नहीं है कि अगर किसी ने इशा की नमाज जमात से पढ़ ली और फजर की नमाज जमात से पढ़ ली तो बीच में जो सवाब का वादा है हदीस मुबारक के अंदर कि एक सारी रात जागने का सवाब है, तो फिर वो एक अलग चीज है, वो तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल जाता है उसके अंदर। नीयत बहुत अहम होती है। ठीक है, तो ये सारे जो काम करने होते हैं ना ये नीयत के साथ करने होते हैं, यानी हम सवाब की नीयत से काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बचपन में होता था कि जी आज तो जी जागने की रात है, तो जागने की रात का मतलब क्या होता था, वो क्रिकेट खेल रहे होते थे। ठीक है, या पता नहीं कौन सा सूर्य पाला एक होता था, वो सड़क के ऊपर खड़े उन्होंने बनाए हुए होते थे, रमजान की हर रात में जो है ना वो हो रहा होता था। ठीक है, तो वो जागने की रात है, भाई जाग तो रहे हैं लेकिन ना किस नीयत से जाग रहे हैं। ठीक है, बल्कि आजकल तो कुछ सालों से हम देखते हैं कि वो नाइट बाकायदा प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, रमजान की रातों में, ठीक है, तो वो तो अल्लाह के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है ना। सवाल ये है कि एतिकाफ में लैलतुल कदर मिली जी, इसी का मैंने जवाब दिया था। मिली का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मीन मिली, सवाब की बात हो रही है, सवाब मिला कि नहीं मिला, मिली का मतलब क्या है, मतलब सवाब मिलने के अलावा और क्या मतलब है, ये मुझे समझ में नहीं आया, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शबे कदर की खैर बरकत से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम बदनसीब है। शबे कदर में बाज़ हज़रात को खास अनवार का मुशाहिदा भी हाँ, बस वही जवाब दिया कि सवाब मिल गया ना उनको, जो जो कि एतकाफ की नियत से मस्जिद में है तो उसको उस एतकाफ का सवाब मिल गया, शबे कदर के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, वो 1,000 यानी 83 साल की इबादत से भी बेहतर है। तो 83 साल गोया कि उसने इबादत, उसने एतकाफ किया, ठीक है, जो एतकाफ की नियत से मस्जिद में मौजूद था शबे कदर में, तो उसको 83 साल से ज्यादा एतकाफ करने का सवाब मिल गया, ठीक है। अब उसने अगर 2 रकत नमाज पढ़ी होती तो वो जो है वो 83 साल 2 रकत नमाज पढ़ने के बराबर उसको सवाब मिल जाता। तो बाज हजरात को खास अनवार का मुशाहिदा भी होता है, मगर ना ये सबको हासिल होता है, ना रात की बरकात और सवाब हासिल होने में ऐसे मुशाहिदात का कुछ दखल है, इसलिए इसकी फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो वो कशफ वाला मामला अगर किसी के साथ हो जाए कि उसको अपनी यानी जिसको कहते हैं ना कि रू यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको कहते हैं, आलम खल्क सॉरी आलम अमर, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड या रूहानी दुनिया, तो ये सारे मामला जो होते हैं जो नूर है और तजलियात हैं और फरिश्ते हैं और ये सारी चीजें, तो ये रूहानी दुनिया की चीज है, तो जिस्मानी दुनिया से रूहानी दुनिया तक देखने के लिए जो जो एबिलिटी होती है उसको कश्फ कहते हैं, ठीक है। कश्फ मीन्स ओपनिंग, ठीक है, इट्स लाइक अ विंडो फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। तो विंडो अगर किसी को अल्लाह ताला ने दे दी तो फिर उसको वो चीज नजर आती है जो कि वहां पर हो रही है, लेकिन नजर आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको यानी किसी ऐसे बंदे के ऊपर फजीलत मिल गई कि जिसको नजर नहीं आ रही, ठीक है, बल्कि उल्टा मामला हो सकता है कि जिसको नजर नहीं आ रही और वो बगैर देखे जो है वो इबादतें कर रहा है, ठीक है, उसको शायद आपसे ज्यादा सवाब मिल जाए, क्योंकि आप तो देख करके इबादत कर रहे हैं ना, तो आपको तो मुशाहिदे की वजह से एक एक बेनिफिट मिला कि आप को ये बात यानी क्लियर हो गई कि हाँ जी वाकई अच्छे कदर है, लेकिन वो बंदा जो है वो तो सिर्फ खबर के ऊपर इबादतें कर रहे हैं, मुजाहिदे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मुकाम जो है वो एक्चुअली मुशाहिदे वाले से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, अगर यानी इट ऑल डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, लेकिन कम से कम ये भी एक है याद रखने वाली बात है। खैर, ये फरमा रहे हैं हजरत के इसकी फिक्र में हमें पड़ना नहीं चाहिए। हजरत सदीक आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अगर मैं शबे कदर को पाऊं तो क्या दुआ करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ्वा फाफू अन्नी, या अल्लाह आप बहुत माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद करते हैं, मेरी खताएं माफ फरमा, ठीक है, ये मशहूर दुआ है जो कि इंशाल्लाह याद होगी। इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इस आयत में तस्री है कि कुरान करीम शब कदर में नाजिल हुआ, इसका यह मफहूम भी हो सकता है कि पूरा कुरान लोहे महफूज से इस रात में उतारा गया, फिर जिब्राईल अमीन उसको तदरीजन 23 साल के अरसे में हसब हिदायत यानी अल्लाह ताला की हिदायत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा लाते रहे, और ये भी मुराद हो सकती है कि इब्तदाई नुज़ूल कुरान इस रात में चंद आयतों से हो गया, बाकी बाद में नाजिल होता रहा, ठीक है, तो ये दोनों मफहूम हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल जो एक्सप्लेनेशन तर्जुमे के दौरान पढ़ी थी कि अनजला युनजलो इंजालन का मतलब जो होता है वो यकमुश नाजिल होता है होना है, तो फिर उस एतबार से देखा जाए तो पहली वाली जो एक्सप्लेनेशन है वही ज्यादा प्रेफर्ड नजर आती है कि आसमानी दुनिया पे तो पूरा का पूरा यकमुश नाजिल हो गया, फिर उसके बाद तदरीजन नजला युनजलो तंजीलन के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु के ऊपर 23 साल में नाजिल हुआ। तमाम आसमानी किताबें रमजान ही में नाजिल हुई हैं। हजरत अबू जर गफारी ने रिवायत किया है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सोहफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम 30वीं तारीख है रमजान में, और तौरात 30वीं तारीख में, और इंजील 13वीं तारीख में, और जबूर 18वीं तारीख रमजान में नाजिल हुई है, और कुरान कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24 तारीख रमजान में उतरा है। तो ठीक है, तो ये हदीस भी मौजूद है और मजहरी में, तफसीर मजहरी में ये भी नकल है। तो इस हदीस के मुताबिक 24वीं तारीख को, और कुछ शायद रवायात ऐसी भी हैं जिसमें 27वीं तारीख को, तो 27वीं तारीख इस तारीख की भी बड़ी अहमियत बताते हैं। तनज्जुल मलाइका, तो रूह, रूह से मुराद जिब्राइल अमीन है। ठीक है, यहाँ पर जो अर्रूह का लफ्ज है, इससे मुराद जिब्राइल अमीन है। कुरान में और मुकामात के ऊपर भी अर्रूह का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो दूसरे मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। तो वहां पर जैसे कि सूरह नहल के अंदर बिर रूही यानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तो वहां पर रूह से मुराद जो है ना वो हिदायत या कुरान या हिदायत। और यहाँ पर बिल्कुल भी कुरान या हिदायत मुराद नहीं है अर्रूह से, बल्कि यहाँ पर जिब्राइल अमीन मुराद है। हज़रत अनस की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शब कदर होती है तो जिब्राइल अमीन फरिश्तों की बड़ी जमात के साथ जमीन पर उतरते हैं, और जितने अल्लाह के बंदे मर्दो औरत नमाज या जिक्रुल्लाह में मशगूल होते हैं, सबके लिए रहमत की दुआ करते हैं। ठीक है, तो फरिश्तों को ये जिम्मे अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम लगाए हुए हैं, उनमें से एक काम जो है वो ईमान वालों के लिए रहमत की दुआ करना और ईमान वालों के लिए मगफिरत की दुआ करना। ठीक है, ये भी, और ये मगफिरत की दुआ जो है ना, ये तो शब कदर के अलावा ही फरिश्ते करते ही रहते हैं, और बहुत सारे हमारे गुनाह फरिश्तों की इन दुआओं की वजह से अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। मिन कुल अमरिन में हर्फ मिन बमानी बा है। ठीक है, यानी मिन जो है उसका जनरल तर्जुमा जो होता है वो से होता है, फ्रॉम इंग्लिश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मिन कुल अमरिन के बारे में इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में लिखा कि मिन जो है वो असल में बा का मानी दे रहा है यहाँ पे, और बा का मतलब जो होता है वो अमूमन जो है वो साथ होता है। ठीक है, तो मिन कुल अमरिन का मतलब हुआ हर अमर के साथ, हर अमर से नहीं बल्कि हर अमर के साथ, जैसे बिस्मिल्लाह ही अल्लाह के नाम के साथ, तो वो बा का तर्जुमा साथ से करते हैं। तो इसी इसके ऊपर फिर उन्होंने दलील भी दी, यानी इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने दलील दी कि यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाही वाली जो आयत है उसमें भी मिन बमानी बा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो दलील के तौर पर फिर यानी कुरान की तफसीर में सबसे पहले किस चीज को इस्तेमाल किया जाता है, कुरान ही को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कुरान की तफसीर सबसे पहले कुरान से की जाती है, अगर कुरान की किसी दूसरी आयत से तफसीर ना मिल रही हो तो फिर हदीस को देखा जाता है, और फिर हदीस में भी अगर तफसीर ना मिल रही हो तो फिर सहाबा कराम के कौल को देखा जाता है, जिसको असर सहाबा कहते हैं या आसान सहाबा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुरान की तफसीर कुरान से करने की एक मिसाल यहाँ पे हमारे सामने रख दी कि दूसरी जगह पर देखा तो वहां पर भी मिन बमाने बा इस्तेमाल हुआ है, कि वो हो यानी हिफाजत करते हैं उसकी अल्लाह ताला के हुक्म के साथ। ठीक है, मानी यह है कि फरिश्ते लैलतुल कद्र में तमाम साल के अंदर पेश आने वाले तकदीर वाकयात लेकर उस जमीन पर उतरते हैं। ठीक है, यानी ये सारे अहकाम के साथ जमीन पर उतरते हैं, और बाज़ हज़रात मुफसरीन मुजाहिद वगैरह ने मिन कुल अमरिन को सलाम के साथ मुतअल्लिक़ करके ये मानी करार दिए हैं कि ये रात सलामती है हर शर व आफत और बुरी चीज से। ठीक है, यानी जो किरात यानी एक किरात जो कि ज्यादा मशहूर है, या ये कि जिन सहीफों से कुरान की तिलावत हम करते हैं ना, तो उनके अंदर सलामुन के बाद वक्फ है। ठीक है, तो गोया कि सलामुन का ताल्लुक जो है वो नहीं, यानी जो पिछली आयत है, आयत नंबर 4। ठीक है, तो आयत नंबर 4 के साथ जोड़ करके सलाम को कुछ मुफस्सरीन ने पेश किया है। ठीक है, कि मिन कुल अमन सलाम। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखेंगे मिन कुल अमन सलाम, तो फिर मानी ये बनेंगे कि ये रात सलामती है हर शर व आफत और बुरी चीज से। ठीक है, लेकिन अगर इसको पीछे से ना जोड़ें बल्कि इसको आगे से जोड़ें, जैसा कि हमारे सहीफों के अंदर ये जो कफ होता है ना, तो ये किफ का मतलब ये नहीं होता कि आयत खत्म हो गई, بلکہ یہ سلام کا جو لفظ ہے یہ ہی حتی مطلع الفجر کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اگرچہ کہ تھوڑے سے توقف کے ساتھ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ پچھلی آیت کا حصہ نہیں ہے بلکہ اگلی جو تین الفاظ ہیں نا، بلکہ چار الفاظ ہیں نا، ان چار الفاظ کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے مصائف ہیں جیسے کہ یہاں پر بھی انہوں نے اسی کو فالو کیا ہے، اس کے اندر سلامن جو ہے وہ آیت نمبر 5 کا حصہ. ٹھیک ہے، اور یہی جو ہے وہ زیادہ کامن انٹرپریٹیشن ہے اس کی. تو وہ یہی ہے کہ من کل امرن میں یعنی معنی یہ ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر میں یعنی سوری اس کا معنی یہ ہوا کہ ساری ساری رات جو ہے نا یہ سلامتی جاری رہتی ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ سلامن عبارت کی اصل ہیا سلامن ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہیا کا لفظ جو ہے وہ یہاں پر محذوف ہے، تو فرماتے ہیں کہ لفظ ہیا حذف کر دیا گیا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ رات، اچھا حذف جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں کیا ہے، کسی کاتب وحی نے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محذوف رکھا ہے ہیا کے لفظ کو. ٹھیک ہے، تو لفظ ہیا حذف کر دیا گیا، معنی یہ ہے کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے اور خیر ہی خیر ہے، اس میں شر کا نام نہیں ہے. یہ بھی تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے یہ بات. اور بعض حضرات نے تقدیر عبارت سلام ہو قرار دے کر اس کو من کل امرن کی صفت بنایا ہے. ٹھیک ہے، سلام ہوا ایکچولی، اور معنی یہ ہے کہ یہ فرشتے ہر ایسا امر لے کر کے آتے ہیں جو خیر و سلام ہے. ٹھیک ہے، وہی بات جہاں پہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ بعض حضرات نے آیت نمبر 4 کے ساتھ سلام کو جوڑا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس طرح سے اس کا تو مطلب یہ بنا کہ فرشتے ہر خیر و سلام کو لے کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو تلاوتیں ہیں یا قراءتیں جو ہیں نا وہ ایک سے زیادہ ہیں، بلکہ 10 اور کی حد تک تو وہ قراءتیں ہیں جو کہ آج بھی محفوظ ہیں اور بڑی مشہور ہیں، لیکن انہیں نے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 20 کے قریب قرآن کی تلاوت. ٹھیک ہے، قرآن کی قراءتیں، تو وہ قراءتوں کے ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ رکا جائے گا کہ یہاں پہ نہیں رکا جائے گا، یا فلاں لفظ کو ایسے نہیں ایسے پروناؤنس کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یا ایون حروف کا بھی ڈفرینس ہوتا ہے کہ جی یہاں پر یہ لفظ نہیں بلکہ یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قراءتوں کا ڈفرینس ہے جو کہ ڈائلیکٹس کا ڈفرینس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ نہیں ہوگا کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی ہوگی والا کانسیپٹ اس کے اندر نہیں ہوتا. یا حتی مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، شروع رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے. تو کمزوروں کے لیے اس کے اندر آسانی ہو گئی کہ بھئی آپ ساری رات نہیں جاگ سکتے، تو آپ بس سحری سے کچھ دیر پہلے آپ اٹھ جائیں اور وضو کر کے جو ہے وہ 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں اور اس وقت دعا مانگ لیں، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو یعنی اس وقت تک بھی اس رات کی انٹینسٹی پوری مکمل طور پر موجود رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے حصے میں، رات کے پہلے حصے میں جو ہے وہ زیادہ انٹینسٹی تھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور سلامتی کی، اور دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ انٹینسٹی کم ہو گئی، اور تیسرے حصے کے اندر اور کم ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک سیم لیول آف انٹینسٹی یا سیم لیول آف رحمت اور سلامتی رہتی ہے. فائدہ، ان آیات میں لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ ان 1000 مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی، تو حساب کس طرح بنے گا؟ تو آئمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے کوئی اشکال نہیں ہے، ورنہ تو پھر آپ یعنی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کمپیوٹر سائنس میں ہوتا ہے نا وہ لوپ میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کہ 1000 سال ہیں یا 1000 راتیں ہیں، ان 1000 راتوں کے اندر بھی 1000 راتوں کے برابر شب قدرے موجود ہیں، تو پھر وہ ایک کیا کہتے ہیں انفینٹ لوپ کے اندر پھنس جاتے ہیں، جو کمپیوٹر سائنس والے جانے ہاں نیسٹڈ لوپ کے ہیں یا انفینٹ لوپ کے ہیں، تو اس میں آپ پھنس جائیں گے، پھر آپ کبھی نکل نہیں سکیں گے. خیر بہرحال مفسرین نے اس کام کو آسان کر دیا کہ نہیں جی یہ وہ مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو، اس لیے کوئی لوپ میں پھنسنے کا مسئلہ نہیں. اختلاف مطالعے کی مطالعے کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اس جگہ اسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. مسئلہ، جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی उसने भी इस रात का सवाब पा लिया। जो शख्स जितना ज्यादा करेगा ज्यादा सवाब पाएगा। सही मुस्लिम में हजरत उस्मान गनी रहमतुल्लाह अलैह की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली तो आधी रात के क्याम का सवाब पा लिया, और जिसने सुबह की नमाज भी जमात से अदा कर ली तो पूरी रात जागने इबादत करने का सवाब हासिल कर लिया। तो इसमें जाहिर है कि बाकी सारी बातें भी आ जाती हैं कि एक शख्स जो है वो ये काम सुस्ती की वजह से कर रहा है, ठीक है, तो सुस्ती की वजह से जो वो कर रहा है तो फिर उसको उस शख्स के बराबर तो सवाब नहीं मिलेगा जिसने के यानी अपनी सुस्ती पर काबू पाया और जो है वो अपने आप को थकाया, ठीक है। लेकिन हर शख्स जो है वो सुस्ती की वजह से काम नहीं करता, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि मजबूरी की वजह से ऐसा इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं जिनके अंदर के कोई छुट्टी वुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है रमजान की, राइट। अब उनका अगले दिन अर्ली मॉर्निंग उनको काम के ऊपर पहुंचना है और सारा दिन उन्होंने काम करना है, कोई रेस्ट का उनके पास मौका नहीं है, ठीक है। तो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो रात को जागे, या तो वो छुट्टी ले ले तो फिर और बात है, लेकिन हो सकता है छुट्टी भी ना ले सके, या हो सकता है कोई बीमारी का मसला है, घर के अंदर कोई ऐसे हालात हैं कि वो फिर आराम नहीं कर सकते, यही उनके पास टाइम है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को महरूम नहीं रखा, बल्कि सिर्फ जो है वो जमात की नमाज के साथ पढ़ लेना, उसी से उनको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियां हमारे लिए फरमाई हुई हैं, बस हमें जो है वो अपनी नीयत जो है वो खालिस अल्लाह ताला की रजा की और आखिरत के सवाब की रखनी होती है, और बाकी ये कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो जितना तकवा हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला की यहाँ हमारी इबादत की और हमारे मुजाहिदों की वैल्यूज जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और हमारा फायदा ही फायदा है। तो अल्लाह ताला मोमिनों को नवाजना चाहते हैं, क्योंकि ईमान वाला जो होता है उसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स, यानी सारी जो मुखालफतें थी ना उनके बावजूद उसने अल्लाह ताला की दीन को सच जाना और सच माना, इकरार किया कि सारी चीजें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो सच हैं, हालांकि बहुत सारी चीजें उसके खिलाफ जा रही थी। ना तो उसको कभी अल्लाह ताला नजर आते हैं, ना कभी आखिरत नजर आती है, ना कभी उसको जो है फरिश्ते नजर आते हैं, कुछ भी ना तो उसको नजर नहीं आता, कुछ भी तो उसको फिजिकली फील नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो बात मान लेता है। तो ये जो बात मानना है ना, ये अल्लाह ताला को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि फिर अल्लाह ताला ढेरों देते हैं, इतना देते हैं कि हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी बस बस करेंगे कि अल्लाह बस इतना आपने दे दिया, मैं तो संभाल नहीं पा रहा इसको, ठीक है, यानी समझे समझाने की खातिर इस तरह से। तो अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, बस हम थोड़ा सा एफर्ट कर लें, थोड़ा सा अपने आप को जरा बिठा लें, मना लें, तो फिर हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी हमारी यही होती है कि हम इतने के लिए भी तैयार नहीं होते, इस वजह से फिर अल्लाह ताला की भी फिर जो नाराजगी है ना वो इसी पर आती है कि मैंने तो यानी कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें देने की, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने आप को जो महरूम रखा है तो फिर अब तो तुम्हारा ही कसूर है, मेरा कसूर नहीं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत बनाई है ना, वहीं अल्लाह ताला ही ने जहन्नम भी बनाई है। तो ये दोनों रियालिटीज हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने जन्नत का मुस्तहिक बनने की तौफीक अता फरमाए। तो क्लास खत्म करते हैं, आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।
हम्म।